اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات پڑھے محمد والا. عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 7th مجلس، ہسٹری آف ہولی پلیسز، جو ہماری ہولی پلیسز ہیں اس کی ہسٹری آپ سن رہے مسلسل. اللہ اعلان کر رہا کہ میرا فیوریٹ ریلیجن، اونلی ریلیجن از اسلام. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس اسلام پر ہیں. یہ صرف اہل بیت کا کرم ہے جس کی وجہ سے ہم آج اسلام پر ہیں، اور یہی وہ ریلیجن ہے، یہی وہ مذہب ہے جو ہم کو ڈے آف ججمنٹ تک لے کے جائے گا، اور وہاں پہ جانے کے بعد جتنے اس وقت دنیا میں مذہب ہے، ریلیجنس ہیں، جتنے بلیوز ہیں لوگوں کے یہاں پہ، وہ سب اس وقت پتا چلے گا کہ جب روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں اللہ کے سامنے اپنے اپنے مذہب کو لوگ پیش کریں گے، اور اللہ کسی کے دین کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اس نے صاف کہہ دیا قرآن میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا پسندیدہ مذہب صرف اسلام ہے. اسلام میں بھی اس وقت 1000 فرقے ہو گئے، بلیوز ہو گئے، لیکن ہمیشہ یاد رکھو، ہم کو اس اہل بیت نے جو اسلام پیش کیا نا، جو دیا، وہ لینا ہے. اسلام میں کسی چیز کا کوئی چانس، کوئی آپشن نہیں ہے. جس کو حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو حرام کیا وہ حرام ہے. اللہ کے رسول نے جو اسلام کو پیش کیا تھا، جو اسلام کمپلیٹ ہوا تھا 10 ہجری 18 ذی الحجہ کو، غدیر کے دن، جب اللہ کے رسول نے میرے مولا کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا کہ من کنتو مولا ہو فاحض علی مولا، اس کے فوراً بعد وہ مشہور آیت آئی سورہ مائدہ والی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا. جو نبی آدم لے کر آئے تھے وہ آج کمپلیٹ ہوا. واتممت علیکم نعمتی، اور آج ہم نے ساری نعمتیں، کاؤنٹلیس نعمتیں، کاؤنٹلیس، اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہوتا، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کتنا بھی آپ کے پاس علم آ جانے دو، جو نعمتیں، جو بلیسنگز اللہ جو ہم کو دیتا ہے وہ کاؤنٹلیس ہوتی ہے. اسی لیے حکم ہے کہ ہر لمحہ، ایوری سیکنڈ، سے تھینک یو ٹو یور اللہ. جب تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری اس کی بلیسنگ، اس کی نعمتوں کو بڑھا دے گا. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، اور آج ہم اس دین سے راضی ہو گئے. اس کا یہ اناؤنسمنٹ خود بتا رہا کہ اب اسلام کمپلیٹ ہوا. لیکن کمپلیٹ کب ہوا؟ جب ولایت علی کا اعلان ہوا. تو پورا اسلام ڈیپینڈ کرتا، پورا اسلام اس وقت کمپلیٹ ہوا کہ جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا. اسی لیے ہم کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ کوئی عمل بغیر ولایت علی کے نہیں ہوگا. اور ارینجمنٹ بھی ایسا ہوا تھا اس دن، اعلان کے بعد اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو بلند کیا تھا. میں غدیر نہیں پڑھ رہا اس لیے کہ میں نجف اشرف میں ہوں، ایک 2-3 منٹ اس علی کے بارے میں بھی سن لے کہ جس کا ذکر سنتے ہو تو دل کو سکون ملتا ہے. نہیں، سکون نہیں ملتا. معراج سے جب واپس آئے تھے اللہ کا رسول، اور رسل آنے کے بعد پورے مسلمان جمع ہیں، ان لوگوں نے پوچھا تھا کیا ہوا، تو اللہ کے رسول نے کہا میں نے اللہ سے بات کی، میرا کنورسیشن ہوا، ڈسکشن ہوا. تو لوگوں نے پوچھا अल्लाह से बात की तो उसकी आवाज कैसी है, कैसा बात किया वो, उसकी आवाज किसी ने सुनी? नबी मूसा ने सुनी थी, उसके बाद ये मुसलमानों ने तो किसी ने नहीं सुनी, आपने सुनी? सुनना भी नहीं चाहते। अरे बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह की आवाज हम सुन लें। तो मुसलमानों ने पूछा कि आवाज कैसी है, तो अल्लाह के रसूल का जवाब सुनो। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि अल्लाह इतना करीम है कि उस आवाज में बात किया, जब वो आवाज में दुनिया में सुनता हूं तो दिल को सुकून मिलता है। तो जब ये कहा तो सारे मुसलमान हैरत में पड़ गए, किसकी आवाज सुनते हैं? हर आदमी एक्सपेक्ट कर रहा था मेरी, मैं क्या बोल गया? इसलिए कि हर आदमी चाहता है ना कि मैं कुछ हूं, हर आदमी एक्सपेक्ट कर रहा था शायद मेरी आवाज। तो अल्लाह के रसूल ने तो बताया कि किसकी आवाज थी, लेकिन मैं शायर के दो मिसरे पढ़ता, सिर्फ दो लाइन बस। उसमें शायर ने कहा कि अल्लाह ने क्या कहा, गौर से सुनना। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो आवाज सुनता हूं तो दिल को सुकून मिलता है। मुसलमानों ने पूछा वो किसकी आवाज थी, कैसी आवाज थी? तो शायर ने कहा कि हक ने फरमाया तुझे अर्श पर क्यों दे जहमत, हक ने फरमाया तुझे अर्श पर क्यों दे जहमत, आज है दर तेरी आवाज में हम बोलेंगे, आज है दर तेरी आवाज में हम बोलेंगे। तो जब ऐलान हुआ मौला की विलायत का, उसके बाद एक कैंप लगाया गया। अल्लाह के रसूल ने कैंप लगा के पूरे मुसलमानों से कहा ये क्यू सिस्टम जब से शुरू हुआ, क्यू लगा के खड़े रहो। ये आप ये नहीं पूछना कि किस हिस्ट्री में, मैं बता रहा, लाइन लगा के ठहरो। इसलिए कि रसूल ने कहा था कि एक साथ नहीं जाना, जाके मुबारकबाद नहीं देना। क्यों? एक साथ जाएंगे तो बाद में ये बोलने का चांस है कि हम गए थे जगह नहीं मिली, रश बहुत था। रसूल ने कहा ऐसे नहीं, लाइन लगाओ, क्यू लगाओ। तो पहला जाके जो बकिन बकिन या अली बोला, तारीख से पूछो वो कौन था। मैं तारीख से आप लोग समझ ही नहीं पाए मैं क्या बोल गया। बकिन बकिन या अली, यानी अली मुबारक हो मुबारक हो, किसने बोला पहली मर्तबा कि तुम मौला बन गए? एक मुसलमानों की एक पर्सनालिटी ने बोला, मैं नाम तो नहीं ले सकता इसलिए कि बहुत बड़ा नाम है, कैसे लूंगा क्या। एक सलवार पढ़ रहे मोहम्मद, दोस्तों कल बात नजफ अशरफ तक पहुंची थी। मैंने नजफ अशरफ की पूरी हिस्ट्री बताई कल कि ये सिटी कब से है और कौन कौन इमाम अली के साथ दफन है। जब बात छोड़ी थी मैंने वहीं से शुरू कर रहा हूं। नजफ इंतहाई इंपॉर्टेंट जगह का नाम है। मैं कोई हमारी होली प्लेसेस को कंपेयर नहीं कर रहा एक दूसरे से, सबकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है, लेकिन नजफ नजफ है। इसलिए आज पहली चीज मैं देख लो कि अगर कोई नजफ में दफन हो जाए, मरे नहीं दफन हो जाए, उसकी ग्रेव वहां बन जाए, और से सुनो, नजफ में कोई दफन हो और रह जाए, दो कंडीशन, दफन होना और रहना। खाली दफन होना नहीं है, दफन तो बहुत कुछ हुए, क्या बोल रहा, खाली दफन होना शर्त नहीं है वहां पर नजफ अशरफ की। दफन होकर रह जाना, जमीन एक्सेप्ट कर लेना। नजफ की जमीन सबको एक्सेप्ट भी नहीं करती है। दफन होना और रह जाना, अगर कोई नजफ अशरफ में आप मरे, मिसाल के तौर पे बॉम्बे में, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा, बॉम्बे वालों को एक बात बोल रहा, बॉम्बे में कोई मरे और उसने ये वसीयत करा कि मेरी बॉडी को नजफ अशरफ लेके जाओ, कर सकता। आप नजफ अशरफ में लेकर गए, कोई मुश्किल नहीं, वहां दफन कर दिया और जमीन, वहां की जमीन तुमको एक्सेप्ट कर लिया, तो सबसे बड़ी फजीलत क्या है नजफ अशरफ की, गौर से सुना, औरत मरद लड़की लड़का सबके लिए मैसेज, सबसे बड़ी फजीलत यह है कि जैसे ही ग्रेव बंद होती, आपका मेरा बिलीफ क्या है, आराम बाग में कोई दफन हो, सब खड़े रह के देखते, मैं मौत की कोई बात नहीं कर रहा, सब खड़े रह के देखते के मौलाना ऊपर बैठ के तलखीन पढ़ाते ना, इन्हें जो नीचे सवालात होने वाले हैं वो बताते, कि ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, राइट? सबको मालूम है कि नीचे अब सवाल होने वाला। आज के जमाने में इतनी अवेयरनेस तो आ गई कि कोई डिनाई नहीं करता कि नीचे सवाल नहीं होगा। अब इतना ही वो मॉडर्न हो जाए, इतना ही सो कॉल्ड एजुकेटेड हो जाए कि वो किसी को माने ही नहीं। अदरवाइज हर शिया को मालूम है कि जैसी ग्रेव बंद होगी नीचे सवालात होंगे, मुनकिर और नकीर आएंगे और सवाल करेंगे, और वो सवाल आसान नहीं है। आज ही सुबह रेक्सोलो की मस्जिद में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट दिस, आसान नहीं है सवाल, इंतहाई सख्त है। वो FIR है हमारी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के ऊपर आपके पूरे अमल बनते, उस रिपोर्ट के ऊपर आपकी पूरी बरज़क की लाइफ चलती। वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो आज के दौर में FIR करते ना, वो है। वो मिसाल दे रहा हूं, तो हर को मालूम है कि नीचे सवाल होने वाला है, लेकिन अगर कोई नजफ अशरफ में दफन हो जाए और रह जाए तो उससे सवाल और मुनकिर और नकीर नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन क्या है? रीजन यह है कि यह बाबुल मदीनतुल इल्म का शहर है, इमाम के सामने फरिश्ते सवाल नहीं कर सकते। आपने इजी लिया इस जुमलों को, कितना बड़ी चीज है। दुआ यह करो कि मरो कहीं भी, इंडिया में, कहीं अमेरिका में, यूरोप में, कहीं मरो, दुआ यह करो कि मौला अली तुमको बुला ले अपने पास। ये इतनी बरकत शहर है, सिटी, सिटी ऑफ नॉलेज बोलो, सिटी ऑफ करम बोलो, सिटी ऑफ रहम बोलो, सिटी ऑफ ब्लेसिंग बोलो। कि इसीलिए मैंने आपसे शायद कहा था या नहीं कहा था नहीं मालूम, कि डेली बेसिस पे क्यों अप्रोक्सीमेटली बोल रहा, 200 बॉडीज आते हैं वहां पे, 200 बॉडीज अप्रोक्सीमेटली बोलो, पूरे इराक से। हर आदमी नजफ अशरफ आना चाहता, करबला मौला में नहीं आते इतने, कासिमैन में नहीं आते, हर जगह की इंपॉर्टेंस है, लेकिन नजफ अशरफ, नजफ अशरफ क्यों है वहां पे? इसलिए कि शहनशाह इमामत आराम कर रहा, 11 इमामों का बाप आराम कर रहा, अबुल आयमा आराम कर रहा, जिसकी मोहब्बत को ईमान कर दिया वो आराम कर रहा, जिसकी मोहब्बत कसौटी है ईमान की, जिसके बगैर कुछ नहीं होता, जिसका एक जुमला मुझे याद आया अभी, जिसका एक जुमला है कि मैं वो अली हूं जो माओं के पेट में नक्श बनाता हूं, मैं वो अली हूं जो माओं के पेट में नक्श बनाता हूं। बहरहाल मैं पूरी मजलिस इसी पे हो जाएगी, मैं रोक रहा, मैं हिस्ट्री पे आ रहा, तो इसलिए कि ये मौला का जिक्र ऐसा है कि जब शुरू होता तो खत्म ही नहीं होता, नहीं ये मौला का जिक्र ही ऐसा, लेकिन हर जिक्र मौला का है। तो वो जो स्पॉट है, आपने कल कहां तक सुना कि नबी आदम और नबी नूह दोनों एक साइड पे है, एक साइड पे आदम है, एक साइड पे नूह है, और बीच में मेरा मौला है, और वो सिटी और मौला के अतराफ एक अजीम पर्सनालिटीज आराम कर रहे, इतनी अजीम पर्सनालिटीज आराम कर रहे कि मैंने जैसे कहा था कि अगर ये लोग बाहर रहे ना तो हर ग्रेव से एक मौजिजा जाहिर हो। नजफ अशरफ का एक और मौजिजा सुन ले, मैं क्या कहूं, हो सकता मैं 9 मोहर्रम तक नजफ अशरफ ही चलता रहा, इतने इतने वहां के फजाइल है। नजफ अशरफ का अब थोड़ा सा सख्त मसला आ रहा, आई नो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मिंबर का हक है, इमाम अली के शहर का यह बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, इसलिए मैं बयान कर रहा। नजफ अशरफ में का एक बहुत मशहूर वाकया अल्लामा मजलिसी और शेख अब्बास खुमी लिखते। अच्छा, अजीब बात यह कि जितने हमारे बड़े मर्जा गुजरे, खुम के रहने वाले, मस्जिद मुकद्दस के रहने वाले, मुख्तलिफ शहरों के रहने वाले, लेकिन हर ने अपनी जगह नजफ अशरफ में ली, करबला में नहीं ली। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड, करबला करबला भी है, लेकिन अजीब बात है कि हर बड़ा मर्जा, अगर आप यू नेम इट, वो वहां पे, इसलिए कि उसकी इंपॉर्टेंस ही अजीब है नजफ अशरफ की। वहां का एक अजीम अजीब मसला है दोस्तों, शेख अब्बास और अल्लामा मजलिसी, अल्लामा मजलिसी का पीरियड 400 साल के ऊपर का है, शेख अब्बास का पीरियड 150 साल पुराना है, 100-150 ईयर्स का पुराना, इतना पुराना नहीं, लेकिन अल्लामा मजलिसी बहुत पुराने। ये वाकया लिखते हैं कि एक उस जमाने का इंडिया, पुराना इंडिया, इंडिया का एक बहुत बड़े बिजनेसमैन पूरी फैमिली के साथ ज़ियारात पे गए और हज पे का इरादा किया था। उस जमाने में शिप से जाते थे लोग, महीनों लगते थे, एक एक साल की ट्रिप होती थी, इस तरह यूं गए, फ्लाइंग विजिट नहीं करते थे ज्यारत पे। आजकल तो फ्लाइंग विजिट होती ना, उस जमाने में फ्लाइंग विजिट नहीं होती थी। ये गए अपनी फैमिली के साथ पूरा। अच्छा, उस जमाने में करेंसी पेपर करेंसी नहीं थी, ना प्लास्टिक मनी थी। क्या था? डायमंड्स, पर्ल्स, गोल्ड, इसमें लोग ये कैरी करते थे, पैसे वाले। एंड ही वॉज वेरी रिच पर्सन फ्रॉम इंडिया। इंडिया मतलब पूरा सब कॉन्टिनेंट का इंडिया। फैमिली के साथ गया, पूरे ज्यारत किया। ज्यारत करने के बाद नजफ अशरफ में बड़ा मशहूर वाक़ है, इसलिए पढ़ रहा कि एक मैसेज पहुंच जाए कि नजफ का एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि मौला कैसे मदद करते। वो पहुंचा वहां पे और पूरी ज्यारत करने के बाद कहा कि मौला अब मैं हज पे चला जाता, हज का जमाना करीब आ गया। इसने पूरे नजफ अशरफ में मालूम किया अपने फ्रेंड, जो भी उसके फ्रेंड सर्कल था, कि सबसे ज्यादा ऑनेस्ट आदमी कौन है यहां पे, ईमानदार कौन है। तो लोगों ने एक बिजनेसमैन को बताया कि ये बड़ा ऑनेस्ट है। ऑनेस्टी हमारी पहचान है, याद रखो, शियत की पहचान ऑनेस्टी है। मैं यूथ को बोल रहा कि तुम अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करना, कि तुम बॉम्बे का कोई लड़का, मैं जनरल बात कर रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड, दुनिया का जो जो मुझे इस वक्त सुन रहा, कि ऑनेस्टी के साथ तुम पहचाने जाओगे। अगर पूरे बॉम्बे में कोई पूछे कि सबसे ज्यादा ऑनेस्ट कौन है, तो वो तुमको बताना, शिया को बताना। इसलिए कि इमाम अली की सेइंग है कि ऑनेस्टी अगर ना हो तो हमारी मोहब्बत ही नहीं आएगी। ऑनेस्टी तुम्हारा क्राइटेरिया, तुम्हारा हर चीज तुम्हारी ऑनेस्टी हो, कॉलेज में, स्कूल में, बॉम्बे छोड़ो, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो, जिस कॉलेज में पढ़ते हो, जिस ऑफिस में जॉब करते हो, वहां पे भी अगर कोई तुम्हारे सर्कल में पूछे, बॉस को पूछे, स्कूल में तुम्हारे फ्रेंड से पूछे, कॉलेजेस में पूछे कि सबसे अच्छी लड़की, ऑनेस्ट लड़की कौन है, तो तुमको बताना। ऑनेस्टी सिर्फ पैसे की नहीं होती, टाइम की भी ऑनेस्टी है। मिसाल के तौर पे 8 आवर्स की जॉब है, हम जा रहे ही नहीं, 4 घंटे जा रहे, 4 घंटे बाहर घूम रहे, वो हराम है सैलरी, वो भी ऑनेस्टी नहीं है। ये याद रखो, आप फोन कर दिए कि आप हैं इस वक्त बांद्रा में, बोल रहे मैं दादर में, वो भी ऑनेस्टी नहीं है ना। बिजनेस में क्योंकि इंशाल्लाह दूंगा, व्हाट डू मीन दूंगा यार, हर चीज में ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऑनेस्टी है तो तुम मोमिन हो, ऑनेस्टी नहीं है तो तुम दिन भर इतने प्रॉब्लम से पड़ जाओगे ना, जो तुम अगर प्रॉब्लम से निकलना चाहते तो अपनी जिंदगी में ऑनेस्टी को इंप्लीमेंट करो। तो इमाम अली के शहर में पूछा उसने कि सबसे ज्यादा ऑनेस्ट आदमी कौन है, लोगों ने बताया कि ये फैमिली जो है, ये आदमी बिजनेस में, ये ऑनेस्ट है। इसने जाके कहा कि भाई मैं ज्यारत पे आया था, इंडिया का रहने वाला हूं, और अब मैं हज पे जाना चाह रहा हूं, हज से फिर ही आऊंगा, मेरे पास काफी डायमंड्स है, काफी पर्ल्स है और सोना बहुत है, मैं चाहता आपके पास ये अमानत रखा दूं। इस्लाम में इसका बहुत सवाब है कि किसी की अमानत को रखना, अल्लाह का रसूल रखता था पुराने जमाने में, आप रखेंगे? उसने कहा कोई बात नहीं, रख दें, हम रख दिया। ये गया हज, इसको शॉर्ट कर रहा मैं, गया हज करके वापस आया 2-3 महीने के बाद। आके इसने जाके नॉक किया, नॉक करके कहा भाई मैं आ गया, मेरा पैसा दे दो। उसने कहा कौन सा पैसा? देखो पैसा कितना नीयत को खराब करता, अब तक ऑनेस्ट था। कहा कौन सा डायमंड, किसकी जवाब कर रहे तुम? उसने कहा मैंने रखा है तुम्हारे पास। और उसने स्ट्रेट डिनाई कर दी, नो मेरे पास नहीं है, अब हमें कोई चीज ही नहीं उसके पास। ये सीधा मौला अली के रोजे में गया, जरी पे। उस वक्त मेरे मौला का रोजा ऐसा नहीं था शानदार जैसा आज है, उस वक्त मेरे मौला की जरी थी, और मौला के रोजे के अतराफ 4 दरवाजे थे, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, ऐसा बड़े बड़े दरवाजे थे, डोर्स थे बहुत बड़े बड़े। तो गया मौला से, कहा मौला मैं आपका मेहमान हूं, मैं आपका गेस्ट हूं, मौला आप मेरी मदद करो, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरे साथ फैमिली है, मैं आपका जायर हूं। देखो इमाम अली कैसे बातों को सुनते और कैसे मदद करते, कैसे इमाम अपने जायर का ख्याल रखते, वो तो हर इमाम रखता, लेकिन उसने जाके एक दफा फरियाद की बस। रात में, शब में, ख्वाब में इमाम अली आ गए। मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा, रियल वाकया सुना रहा जो शेख अब्बास ने लिखा। मौला अली ख्वाब में आए, मौला अली ने ख्वाब में आके कहा क्या लेस जायर, तू क्या चाहता है? कहा मौला आप जानते कि मैं लूट गया, मैंने उसके पास रखाया था, एंड यू नो कि मैंने रखाया था, और वो डिनाई कर रहा, मैं हज करके आया, मैं आपका जायर हूं। तो इमाम ने कहा डोंट वरी, कल साउथ के दरवाजे पे जाना, जुनूब के, फजर की नमाज पढ़ के। देखिए हर जगह नमाज का बड़ा ताकीद की गई, कोई दुआ कबूल ही नहीं होती बगैर नमाज के, ये याद रखो। यूथ को बोल रहा कि नमाज के बगैर आजादारी भी नहीं होती, नमाज के बगैर तुम्हारी दुआ भी कबूल नहीं होती। ऑलवेज नमाज और अली साथ है, अली और नमाज जुदा नहीं है, अली और नमाज साथ है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? मेरा क्लियर मैसेज था मेरे यूथ को, कभी भी इमाम अली की मोहब्बत में नमाजों को मत छोड़ो। एंड डोंट से कि आई लव इमाम अली, इमाम अली उससे लव ही नहीं करते, मोहब्बत ही नहीं करते कि जो नमाज नहीं पढ़ता। बहरहाल मुझे नमाज पे बोलना नहीं, तो नमाज फजर के बाद तो साउथ के दरवाजे पे चला जाओ, इमाम अली बोलते। और जो पहला आदमी एंटर हो उसको जाके ये बता देना, तेरा मसला वो तेरा मसला हल कर देगा। ये नमाज इमाम अली आके बोले, ये नमाज पढ़ के सीधा चला गया उस दरवाजे के पास गया जो इमाम ने इशारा किया था। अब जाके इंतजार करा, अंधेरा थोड़ा थोड़ा अंधेरा खत्म हो रहा, दिन निकल रहा। उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन, कमर झुकी हुई ऐसे, पीठ के ऊपर लकड़ियां स्टिक्स रखी हुई है, वो जंगल से जैसे लकड़ी काट के लाके बाजार में बेच रहा, वो एंटर हुआ पहला आदमी। इसने कहा ये वो तो ताजा, मोटा ताजा, ये मदद करेगा मेरी? उसने बोला ही नहीं। फिर गया इमाम अली के पास, कहा मौला प्लीज हेल्प मी मौला। फिर इमाम अली दूसरे दिन आया, फिर आके उन्होंने वही कहा कि जो पहला आदमी आएगा ना उसके पास जाना। दूसरे दिन वही बंदा आया, उसने नहीं बोला। थर्ड डे आ गया, थर्ड डे जाके उसने फिर कंप्लेन, गौर से सुनो, फिर कंप्लेन की मौला प्लीज हेल्प मी। थर्ड डे फिर इमाम अली आए और आके उसी अंदाज से, प्लीज मेरे जुमले गौर से सुनो, उसी अंदाज से सॉफ्टली मोहब्बत के साथ प्यार के साथ अपने जायर को बोलते कि ऐसा कर जाहिर जो पहला आदमी आए ना उसको बता दे। अली ने आके ये नहीं कहा कि मैं दो दिन से बोल रहा तू सुनता नहीं, क्या बोल रहा यार, जबान को सही करो उसके बाद नजफ अशरफ जाओ, सॉफ्ट स्पोकन बनो, सॉफ्ट स्पोकन। गुस्सा कोई काम की चीज नहीं है, हराम है। जरा मेरे मर्जी के खिलाफ काम हो मेरे तो तेवर बदल जाए। अब पैसे वाले गरीब से कैसे बात करते, किस तेवर से हम बात करते? अगर इस तेवर के साथ तुम अपनी जिंदगी को बॉम्बे में गुजारोगे तो एक चीज याद रखो, ऐसे लोगों को इमाम कभी सीने से नहीं लगाएगा कि जो सॉफ्ट स्पोकन ना हो, जबान में जिस जबान से तुम अली अली कहते हो ना उस जबान में मिठास को लाओ, स्वीटनेस को लेकर आओ। इतना अली कायनात का मालिक है, इमाम अली बोल सकते थे उसको कि मैं दो दिन से तुझे बोल रहा क्यों नहीं सुनता तू? इतनी सॉफ्टली कहा कि जो पहला आदमी आया ना उसी के पास जाओ। थर्ड डे फिर वही आदमी आया, इसने कहा चल जाके बोलते हैं उसको। उसने जाके कहा वो आदमी ने मेरे पैसे ले लिए, कैन यू हेल्प मी, इमाम का हुक्म है। उसने कहा ठीक है जोहर के वक्त आओ। जोहर के वक्त नमाज के बाद वो गए, जाने के बाद वो चार कई लोगों के साथ बैठा हुआ था और स्पीच दे रहा था। ऐसे लोग स्पीच भी बहुत देते गए जो मैं कुछ बोल गया नहीं, क्या बोल रहा मैं। ऐसे लोग लोगों को इंप्रेशन बिठाने बड़ी बड़ी लंबी लंबी तकरीरें करते। अब कोई लंबी तकरीर करते ये मत समझो कि वो आगे पीछे है, आई डोंट मीन दैट, बैठ के तकरीर कर रहा हो। तो ये ओल्ड आदमी, बूढ़ा आदमी, एक गया जाके उसने कहा और ये साथ है इसके। वो आदमी ने इसको देखा यार ये बंदा इसके साथ क्यों आया। ये ज़ईफ ओल्ड मैन जाके कहता है कि ए भाई साहब, मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा, ए भाई साहब मैं कोई ऑरेटर नहीं हूं, कोई स्पीकर नहीं हूं, मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताता, इसीलिए अपनी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस तुमको बता रहा कि मैं तुम सबसे ज्यादा एज रखता हूं, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है और मेरे साथ लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ वो मैं बताता, शायद वो बताने से किसी को का जहन खुले और वो गुनाह से बच जाए। ये डायरेक्ट नहीं कहा कि पैसे वापस करें, जहन खुले और गुनाह से बच जाए। अब सबने सीनियर सिटीजन है, लोग इज्जत तो करते, आज इज्जत नहीं करते बड़ों की, लेकिन उस जमाने में तो करते थे। जो बोलना था मैंने बोल दिया। आज हमारे पास कोई रेस्पेक्ट नहीं है बड़ों की, कम से कम सफेद दाढ़ी की तो इज्जत करो। दाढ़ी की बोला मैं, क्लीन शेव की नहीं बोला, दाढ़ी की तो इज्जत करो, जो सफेद दाढ़ी उसके चेहरे पे है ना। तो नहीं हो तो आप बोलेंगे क्या क्लीन शेव की इज्जत नहीं है? नहीं नहीं, आई डोंट मीन दैट। एक चीज है, ये मुहर्रम का गिफ्ट देना है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने दिया लेकिन मैं चाहता कि सब दे, कम से कम यार 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक 12 मुहर्रम तक तो हाथ मत लगाओ अपने चेहरे को, ये दिनों की तो थोड़ी रेस्पेक्ट कर लो। ये मुसीबत के अयाम है। ये नहीं कि 8 मुहर्रम को भी आप खड़े रह के मार रहे हैं, 9 मुहर्रम को भी मार रहे हैं। लीव इट यार, लीव इट। इमाम हुसैन किससे अगर मोहब्बत है ना, लोग बोलते मौला मेरी जान कुर्बान, मैंने अपने कानों से सुना ज़ियारत पे, हरम को देख के मौला हुसैन को देख के औरत मर्द बॉम्बे वाले बोल रहे, बॉम्बे वाले क्या सभी बोलते मौला मैं कुर्बान आपके ऊपर, मेरे बच्चे कुर्बान, मेरी जान कुर्बान आपके। मैंने वहां मजलिस में कहा मौला के ऊपर जान कुर्बान कर रहे, 4 बाल तो छोड़ो पहले, जान को कुर्बान तो बाद में करना, आए हो अली के पास तो 4 बाल तो छोड़ लो, सर पे हिजाब तो डाल लो, अगर कुछ नहीं करोगे सिर्फ बोले जा रहे जबान से मौला कुर्बान, आप हुक्म करो। ये एग्जैक्टली वैसा ही शिया जो कूफे में था, जुमला सख्त नहीं है, रियलिटी है, हकीकत है। सो कॉल्ड शिया जो 20,000 के 30,000 के करीब जो कूफे में थे ना, जो मौला हुसैन को खत लिख के बोल रहे थे कि मौला प्लीज कम, हम आपको सपोर्ट करेंगे, जब वक्त आया तो सब छोड़ के चले गए। इससे बचो। तो हुआ क्या, इसने कहा आप अपनी जिंदगी, बस वाक्या सुन लो, मैं खत्म कर रहा हूं ये वाक्य को। इसने कहा कि भाइयों मैं रोजाना दुआ, जब स्पीच शुरू किया इसने, इसने कहा मैं रोजाना दुआ करता था अल्लाह से कि अल्लाह प्लीज तू मुझे रोजे महशर डे ऑफ जजमेंट में लोगों के सामने जलील मत कर, लोगों के सामने मुझे सजा मत दे मेरे गुनाह की, जो तुझे सजा देना है, जो मैंने गलती की मुझे माफ कर दे, अगर देना भी है तो थोड़ी या दुनिया में दे दे, वही काफी है मेरे लिए, प्लीज अल्लाह तू मुझे बचा ले। और मौला का वास्ता देके दुआ कर, ये आप भी दुआ कर सकते कि अल्लाह रोजे महशर हमको बचा ले, वहां लोगों के सामने हमारी इंसल्ट ना कर, लोगों के सामने हमको जलील ना कर। इसकी दुआ थी, हर आदमी की दुआ अपनी स्टाइल की होती, इसे दुआ करते रहा कि अल्लाह तू मुझे बचा ले, तू मुझे बचा ले। अगर मेरे कोई गुनाह है, गौर से सुनो, इसमें कई मैसेजेस मिलेंगे, अगर कोई गुनाह है जो मैंने किया है तो फॉरगिव कर दे, वो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर कोई सजा दे रहा भी, वह पनिशमेंट में मुझे हो रही भी, तो थोड़ी देना यही दे दे। ये कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा शेख अब्बास वाकई बोले यार आधा घंटा हो गया मैंने पानी नहीं पिया, सलवात पड़े मोहम्मद, तो उसने कहा मौला अल्लाह जो देना मुझे दे दे। कहता है कि रात में मैंने ख्वाब में देखा, गौर से सुनो, रात में मैंने ख्वाब में देखा कि डे ऑफ जजमेंट है, रोज़े महशर है, महशर कोई मामूली जगह नहीं है, महशर की जगह, और उस महशर में मैं सिरात पे से जा रहा, पुले सिरात, जो आप तलखीन में पढ़ते कि सिरात हक है, हक है, हक है, हम तलखीन में बोलते सिरात, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, सिरात उस ब्रिज और उस फ्लाईओवर को बोलते कि जो नीचे जहन्नम है और ऊपर वो फ्लाईओवर है जिसके ऊपर से आपको जन्नत में जाना है, वो अजीम फ्लाईओवर के जिसको काउंटलेस कितने माइल है, अगर मैं नहीं बोलना चाहता उसकी डिटेल में, मेरी टॉपिक सिरात नहीं। कहता ये कहता है पूरे मजमे को कि मैं सिरात पे से ऐसा जा रहा था, उस सिरात के ऊपर अल्लाह ने कई चेक पोस्ट बनाए जो तुम्हारे गुनाहों को चेक करेंगे, उसमें एक चेक पोस्ट वो है कि जो दुनिया में तुम किसी का माल खा के मर गए और तुमने अदा नहीं किया तो उसकी चेक पोस्ट। ये कहता है जैसे ये भी माल का ही केस था ना, इसीलिए इमाम ने इसके बाद भेजा था। इसने कहा कि जैसे मैं ख्वाब में देख रहा हूं, ये प्लीज गौर से सुनो, औरत मर्द लड़की लड़का सबके लिए मैसेज, कहता है कि जैसे ही मैं वो फ्लाईओवर पे पहुंचा सिरात के ऊपर, तो मैंने देखा कि नीचे जहन्नम में से एक शोला ऐसा लहराता हुआ मेरे सामने आया। जब नजदीक आया तो मैंने देखा कि काला आदमी, जलावा आदमी आके कहा तूने मुझे पहचाना? इसने कहा नहीं, मैंने नहीं पहचाना। कहा याद है तूने मुझसे 5,000 10,000 जो भी दिनार थे लिए थे दुनिया में, मुझे चाहिए अब। इसने कहा वो तो दुनिया में लिया था, अब क्या करेगा यहां लेके, अब मैं कहां से दूं? तो उसका जुमला है उसका जुमला यह है कि अल्लाह ने यह चेक पोस्ट बनाया इसलिए है कि तुझे देना ये। इसने कहा कि यहां लेके क्या करोगे, आई एम नॉट कैरिंग एनी मनी, ये तो महशर है यहां क्या। तो उसने कहा मुझे यहां पैसा नहीं चाहिए। गौर से सुनो, इसने कहा ये आदमी ने कहा कि मुझे, मैं यहां क्या करूंगा, पैसे थोड़ी मेरे साथ है। तो वो जहन्नम से आने वाले ने कहा कि मुझे यहां पैसा नहीं चाहिए, मैं जहन्नम में जल रहा, तेरा जिस्म जन्नती है, तेरे जिस्म से मुझे कुछ राहत मिल रही, थोड़ा सुकून मिल रहा, थोड़ा आराम मिल रहा, तो इतनी इजाजत दे दे कि मैं अपनी एक उंगली तेरे सीने पे रखूं कि कुछ देर मुझे राहत मिल जाए। कहता है उसने रखा, मैं चीख मार के उठ गया ख्वाब से। जब मैं ख्वाब से उठा तो ये मेरा पूरा सीना जला हुआ था, ये हिस्सा। मैं डॉक्टर्स के पास गया, कोई इलाज नहीं हुआ। इसने अपनी खमीज को उतारा, उतार के कहा भाइयों देख लो, अगर किसी का माल खा के तुम मर गए और तुमने अदा नहीं किया तो ये हशर वहां होने वाला है। ये वाकया सुना, वो बंदे ने अंदर गया, पूरा सोना जवाहरात लाके इसको दे दी। इसको बोलते रद्दे मजालिम, दिस इज कॉल्ड रद्दे मजालिम, विच आज हमारे माशरे में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे पास ये रद्दे मजालिम 80% लोगों को नहीं मालूम है। तो मैं ये नहीं बोलता कि 100%, 20% मालूम होगा, बट कितने लोगों को मालूम है कि व्हाट इज रद्दे मजालिम। नजफ अशरफ का ये इतना इंपॉर्टेंट वाकया था कि अब आप ये सोचो, जस्ट चेक योर सेल्फ कि अगर तुम्हारा माल किसी का माल, ये सिर्फ पैसा नहीं है, इवन ये हैंकरचीफ, ये रुमाल मैं किसी मोमिन का ले लूं, बुक मैं मोमिन का ले लूं, किसी का इवन तुम उसके घर में जाके किसी ने पेन दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पेन दिया तुमको, तुमने पेन लिया। इसलिए आजकल लोग इतने स्मार्ट हो गए कि अब पेन मांगो वो कैप अपने पास रख के पेन देते, डायरेक्ट पेन नहीं देते। क्यों नहीं देते? डायरेक्ट देंगे तो पेन लेके चला जाएगा। इवन अगर तुमने पेन लिया, मैं मिसाल दे, क्या वैल्यू है पेंसिल की, क्या वैल्यू है, वो पेंसिल तुम्हारे लिए प्रॉब्लम कर देगा। अल्लाह ये बोलता है कि जब तुम आओ किसी का माल लेकर मत आओ, यू हैव टू बी क्लीन। तो रद्दे मजालिम जाके मौलानाओं से पूछा कि व्हाट इज रद्दे मजालिम, हर महीने इसकी 2 रकत नमाज है, नॉर्मल नमाज की तरह नमाज पढ़ो, नियत करो कि रद्दे मजालिम की नमाज, और नमाज पढ़ के अल्लाह बीबी की तस्वीर पढ़ के दुआ करो कि परवरदिगार जिस जिस का माल, जिस जिस की अमानत मेरी गर्दन के ऊपर है, मैं मरने से पहले तू सबको माफ कर दे। रद्दे मजालिम की अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह जितने तुम्हारे गुना, वो गुना है कि जिसको तुमको नहीं मालूम है या कुछ ऐसा, वो उस उनके हिस्से में जाता। दूसरी चीज ये करो, 100 रुपए क्या वैल्यू है बॉम्बे में 100 रुपीज का, एग्जाम्पल दे रहा, 100 रुपीज अपनी अपने पास से निकालो। और दीनी मदरसे यहाँ पे बहुत है, या जैसे हम बांद्रा में भी चलता, डोंगरी में भी चलता, ये पैसे आप किसी को दे नहीं सकते, खाने के लिए गरीब को नहीं दे सकते। रद्दे मजालिम के पैसे सिर्फ सिर्फ मदरसों में दे सकते, दीनी मदरसा। तो बॉम्बे में तो 1000 दीनी मदरसे चल रहे, उन मदरसों में आप 100 रुपए दे, मिसाल दे रहा मैं, 100 मतलब 100 ही नहीं, 2 आप दे सकते, जो हर महीने 2। नियत ये करो कि मेरे वो गुना जो मुझे नहीं मालूम, या किसी का माल मेरी गर्दन पे है विच आई डोंट नो, उसकी बख्शीश के लिए। अजीजो ये इमाम अली के शहर का मैसेज है, नजफ अशरफ का मैसेज। आप सोचो मौला अली ने अपने शहर में बताया कि रद्दे मजालिम का जुर्म क्या है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद, रद्दे मजालिम इतका खत्म हो गई बात। नजफ अशरफ में मौला के एक साइड पे अल्लामा हिल्ली है, दूसरी साइड पे मुकद्दस अर्दबेली है। मौला के सामने कौन है? शेख अब्बास खुमी, बिल्कुल सामने। शेख अब्बास खुमी कहां है? जस्ट ऑपोजिट। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है शेख अब्बास के, जिनके 150 बुक्स है, 150 बुक्स शेख अब्बास के। लेकिन 150 बुक्स में, आप प्लीज गौर से सुनना, 150 बुक्स में एक बुक इनकी ऐसी है जो सबसे ज्यादा फेमस हुई, सबसे ज्यादा फेमस, ऐसी फेमस हुई, जुमला गौर से सुनो, ऐसी फेमस हुई कि अगर आज आगा सिस्तानी हो रहबर मौजम सैयद अली खामेनाई साहब हो, आगा फयाज हो, आगा हकीम, कोई मर जाओ, वो जो जहां घर में नमाज पढ़ते ना उनके बाजू ये किताब रहती। कितनी अजीब बात है नहीं कि, और एक गरीब रिक्शा पुलर हो, लेबर हो, उसके पास भी ये किताब है। मिलियंस की तादाद में आज ये बुक्स, इनकी ये एक बुक जो 20 लैंग्वेजेस में, 20 लैंग्वेजेस में प्रिंट हुई। अब बात यहां आई तो मैं एक ऐलान कर दूं कि जेपीसी वाले जो काम करते हैं, इनके पास कुछ बुक्स आए हैं जो लेडीज में, कोई स्पॉन्सर है कि जो बुक्स को स्पॉन्सर कर रहा फ्री, उनके काउंटर लेडीज काउंटर पर जाओ और जाकर बुक्स लो, लेकिन ये नहीं कि फ्री का है तो पूरे लेके चले जाने। फ्री की किताबें पढ़ते भी नहीं लोग, लेके जाके रैक में रख देंगे, फ्री है लेना है ले, नो, टेक ओनली वन बुक, अब पढ़ो एंड से थैंक यू टू जेपीसी कि उन्होंने स्पॉन्सर बनाए और बेहतरीन रिलीजियस बुक्स हैं। मैं औरतों को बोल रहा, बच्चों को मत लेने दो, बच्चे थोड़ी पढ़ेंगे, इंग्लिश बुक्स है, लेडीज ले और लेकर एक बुक लो, एक बुक लेकर पढ़ो और उससे कुछ सीख लो। बहरहाल एक साल बाद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो शेख अब्बास कुमी की 150 बुक्स में एक बुक मशहूर हुई। इमाम अली ने अजीब मशहूर किया इसको, अजीब मशहूर किया। दोस्तों ये दुआ करो कि इमाम अली ऐसा चुन ले किसी को, पिक कर ले, पिक कर लिए तो कायनात, जैसा मैंने पहले दिन बोला था, जर्रे को आफ्ताब बना देते। वो आदमी के 150 बुक्स में से एक बुक ऐसी फेमस हुई, ऐसी फेमस हुई कि मिलियंस की तादाद में 20 लैंग्वेजेस में प्रिंट हुई। इंग्लिश में भी है, पर्शियन में भी है, गुजराती में भी है, उर्दू में भी है, रशियन में भी है, कोरियन में है एंड जर्मन लैंग्वेज में, ये तो मैं जानता। लेकिन जो मुझे लिस्ट आई, अल खातून्स पब्लिकेशन है वाशिंगटन में, वाशिंगटन में अल खातून्स पब्लिकेशन, उनके पास ये बुक्स है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज। आप बोलेंगे वो कौन सी बुक है जो हम नहीं पढ़ते, गुजराती में भी है, तो क्यों है ये? इसके पीछे एक रीजन है, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक नहीं है, कोई एक्स्ट्रा, ऐसी किताबें कई उलमा ने लिखी। इनकी जो इल्म की बुक्स है, जो वो बुक पढ़ने के बाद अंदाजा होता कि कितने नॉलेजेबल पर्सन थे, वो बुक्स उतने फेमस है हुए, ये बुक फेमस हुई। इसके पीछे का रीजन सुनो, वो मेरी मजलिस का आज की सातवीं मजलिस का कंप्लीट मैसेज है कि क्यों रीजन क्यों हुआ। ये यूथ को मैसेज है, बड़ों को ये मैसेज नहीं, ये यूथ को है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बुक नहीं है, इनकी दूसरी बुक्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, इनकी नॉलेज सामने आती कि कितना आलिम आदमी था। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है, कई उलमा ने ऐसी किताब लिखी, इवन जीशान हैदर जवादी जो आज के है उनकी भी किताब है ऐसी, कई उलमा ने लिखी इस तरह की बुक। वो बुक में है क्या? बुक खोलो, सिर्फ सूरह यासीन, स्टार्ट यासीन से हो रहा है, कुरान के सूरे, डेली के दुआएं हैं, एवरीडे क्या दुआ पढ़ना, एवरी मंथ क्या दुआ पढ़ना, चांद को देखकर क्या पढ़ना, उसके बाद हर ज्यारत के अमाल बताए कि ये अमाल, ये अमाल, ये अमाल, ये अमाल करो, और सूरे है, ज्यारत है, और डे टू डे के जो अमाल है वो है। कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक नहीं है, लेकिन इससे अच्छे बुक्स ऐसे प्रिंट हुए, लेकिन कोई बुक फेमस ही नहीं हुई। और ये दफन का है, मौला का जो जरिए अंदर, सहन के अंदर, सहन के अंदर बिल्कुल सामने, इन्हें कितना ये बीच का अंदर का सहन है, सामने खबर में है उनकी, इन्हें मौला की जरिए मुबारक से हार्डली 18-20 स्टेप्स होंगे वहां पर यह दफन है। क्यों उनको रीजन, प्लीज गौर से सुनो, क्यों? ये रहने वाले हैं खुम के, शेख अब्बास खुमी, इनका नाम है शेख अब्बास खुमी। मैं बुक अभी बोलूंगा आपको तो आप बोलेंगे ये तो हमारे पास भी है। शेख अब्बास खुमी खुम के रहने वाले, फैमिली पूरे खुम की है। स्टार्टिंग में इनका जो एजुकेशन हुआ वो खुम में हुआ। इन्होंने एक किताब लिखी, गौर से सुनो, यूथ सुनो, इन्होंने एक बुक लिखी, यही बुक कुरान के सूरे, डे टू डे लाइफ के मसले और ज्यारात, ये इसके पूरी एक, अच्छा उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, शेख अब्बास ने लिखा एक ही किताब लिखा, और इनके फादर भी वहीं रहते थे खुम में, ये भी वहीं खुम में रहते थे, पूरी फैमिली थी, पूरे स्टूडेंट्स थे। इनके कलीग एक स्टूडेंट ने, इनका एक दोस्त ने कहा कि शेख अब्बास तुमने वो किताब जो लिखी है ना, कैन यू गिव मी, मैं उसमें से पढ़ के मैं स्पीच देना चाहता हूँ, मैं तकरीर करना चाहता हूँ, यू नो कि मैं तकरीरें कर रहा हूँ मासूमा के रोजे में, तो मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, मेरे पास बुक नहीं, उस जमाने में बुक्स इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, प्लीज कैन यू गिव मी योर बुक। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो अल्लाह के लिए लिखा, दे दिया बुक। उसमें से उसने पढ़ा, पढ़ के बेहतरीन स्पीचेस देने लगा डेली सुबह में मदरसे में, मासूमा की, अल्लाह हमको मासूमा की ज़ियारत नसीब करे। इंशाल्लाह जब मैं गुलिस्तान हिंद का अशा पढ़ूंगा 24 सितंबर 13 मोहर्रम, 13th मोहर्रम, अब वो 12 मोहर्रम का नहीं है जो मैंने ऐलान किया था, इसलिए कि 12 मोहर्रम को तो यू नो बेटर देन मी कि एक बिजी डे है यहाँ का, तो लोगों के निकलने का मुश्किल होगा जुहू पहुंचने का, इसीलिए 13th मोहर्रम से, तो वहां की जो मेरी टॉपिक होगी ना वो यही टॉपिक होगी, काजिमैन, ये टॉपिक नहीं होगी जो यहां पढ़ा, वहां काजिमैन होगा, सामेरा होगा, इसलिए कि हम काजिमैन जाते लेकिन खाली काजिमैन जाते, सामेरा जाते सिर्फ सामेरा जाते आते, सामेरे में है क्या, काजिमैन में है क्या, मशहद मुकद्दस है, खुम है, मदायन है, वो एरियाज जिसकी ज्यारत हम करते जो हमारी होली प्लेस है। यही टॉपिक को जैसे मैं फर्स्ट डे से बोल रहा वहां कंटिन्यू करूंगा, जो यहां छोड़ा वहां पे होली प्लेसेस बताऊंगा, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। एनीहाउ, तो ये किताब को लिया और बेहतरीन तकरीर करने लगे, जबरदस्त। इनके फादर, गौर से सुनो, एंड कर रहा मैं इस वाक्य को, मेरा टाइम भी हो रहा, इनके फादर आए सुबह सुबह मदरसे से घर आए, शेख अब्बास बैठे हुए थे, ही वॉज वेरी यंग, शादी नई नई शादी हुई थी और साथ रहते थे माँ बाप के, एक बच्चा हो गया था, इनके फादर ने कहा कि शेख अब्बास, गुस्से में वाइफ के सामने, शेख अब्बास मुझे कितनी उम्मीद थी तुम्हारे से, कितने एक्सपेक्टेशंस थे तुम्हारे से, मैं कितनी उम्मीद लगा के था कि तुम बेहतरीन आलिम बनोगे, तुम बहुत अच्छी किताबें लिखोगे, देखो तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा फ्रेंड कितनी अच्छी तकरीर कर रहा और तुम कुछ नहीं करे, अपनी लाइफ में कुछ नहीं करे, तुम पढ़ रहे पता नहीं क्या पढ़ रहे तुम, देखो तुम्हारा फ्रेंड कितनी अच्छी तकरीर कर रहा, मेरे को कितना एक्सपेक्टेशन था तुम्हारे साथ, तुमने मुझे ये किया, बाप डांटने लगा। शेख अब्बास ये कहते, गौर से सुनो, यूथ को बोल रहा ये मैसेज है, शेख अब्बास ये कहते, अगर उस वक्त मैं बाप को टोकता, बाप को रोकता, रोक के बोलता कि डैड वो जो पढ़ रहा वो मेरी किताब से पढ़ रहा, तो एक लम्हे के लिए डैड को शर्मिंदगी होती बेटे के सामने, इन्होंने कहा मैंने जो लिखा वो तो उसके लिए लिखा, अरे यार मैंने लिखा उसके लिए, अल्लाह के लिए, अब अल्लाह इसको इज्जत दे, तो बाप को नहीं रोका, बाप को नहीं रोका, खामोश बैठ गए, तो अल्लाह ने इस बुक को इतना फेमस किया आज 150 ईयर्स से, मैंने आपको अभी बताया कि कई ऐसे बुक्स है, बड़े बड़े उलमा ने लिखा इसी टाइप के बुक्स, कोई फेमस नहीं है, आपको पता कौन सी बुक, मफातिहुल जिना, हर घर में, मर्चा से लेके नीचे रिक्शे वाले तक हर आदमी मफाती पढ़ता, यह शेख अब्बास का वो कंट्रीब्यूशन है। ये किताब को देखो फिर अपनी लाइफ को देखो कि अगर तुम पेरेंट्स की इज्जत करोगे, मैं यूथ को बोल रहा, अपने मां बाप की इज्जत करोगे, रेस्पेक्ट करोगे, अगर आंसर बैक नहीं करोगे तो दुनिया और आखिरत में अल्लाह इज्जत देगा। इमाम अली उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, याद रखो, लड़की हो लड़का हो, डोंट टेल देम ऑन देयर फेस के डैड यू डोंट नो, इंसल्ट मत करो मां बाप की, किसी के प्रेशर में आके मां बाप को जवाब मत दो, वो तुम्हारी लाइफ का डिजास्टर है, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर मां बाप तुमसे नाराज, एक आजादारी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो मां बाप की इज्जत नहीं करता वो इमाम की क्या करेगा, वो आजादारी क्या कर रहा, मैं यूथ को बोल रहा, चेक योर सेल्फ, डोंट रेज योर वॉइस, ये मत बोलो कि मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं, मैं अच्छा एजुकेटेड हूं, डैड यू डोंट नो, नो, ये जुमला नहीं बोलना कभी, मां को नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, इताअत, ओबीडियंट तुमको वो स्टेज पर लेके जाती, इफ यू आर नॉट ओबीडियंट तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों मैं क्या करूं, अफसोस के नहीं, 10-20 हो गए, 50 मिनट की मजलिस हो गई, मुझे 10:30 खत्म करना है, ये हिसाब से, ये घड़ी से, आप एक सलावत पढ़ लें बाबा से। समझ में आई बात? सिर्फ मां बाप की इज्जत करो, किसी की इज्जत, जो मां बाप की इज्जत करता है वो अल्लाह की भी करता है, इमाम की भी करता। कल भी इंशाल्लाह नजफ अशरफ ही रहेगा, आई ट्राई टू फिनिश नजफ अशरफ टुमारो, तो शबे आशूर की मजलिस में करबला तक लेके जाऊंगा। करबला में जो छूटेगा फिर गुलिस्तान हिंद के मजालिस 13 मुहर्रम से 21 मुहर्रम तक। मैं इलाके ये स्पॉट पे क्यों छोड़ रहा आपको कि आज जिस शहीद का जिक्र है उसकी पूरी जिंदगी इताअत में गुजर गई। आप समझ ही नहीं पाए मैं क्या बोल गया। आज जिस शहीद का मातम पूरी दुनिया में है, 8 मुहर्रम का मातम, एक शहीद है वो, ऐसा शहीद है कि आज पूरी दुनिया में 8 मुहर्रम उससे मंसूब है। 8 मुहर्रम मीन्स वो उस वो शहीद की पूरी जिंदगी सिर्फ इताअत में गुजरी, 32 ईयर्स की लाइफ है। मेरा जुमला प्लीज गौर से सुनना, 32 ईयर्स 32 साल की जिंदगी है, 32 ईयर्स में जिसकी एक ख्वाहिश एक दुआ पूरी नहीं हुई, कितना मजलूम है नहीं? तो अल्लाह ने इसको बाबुल हवाइज बना दिया। इनका एक अमल है, हमने इस साल करबला मौला में जब मैं गदीर में यूके ग्रुप को लीड कर रहा था तो हमने एक अमल किया मौला अब्बास की जरी के पास, बड़ा मशहूर अलम, या काशिफुल करबे अनवजिल हुसैन अलैहि सलाम, एक शिफ करबी बेहक है अखी अकल हुसैन अलैहि सलाम, करके देखो, करके देखो। गुलिस्तान की मजलिस में इसकी डिटेल्स बताऊंगा, पहाड़ भी टूटे, पहाड़ टूटे तो तुम्हारी दुआ कबूल होती। ये वो अमल है मौला अब्बास का, 133 टाइम्स पढ़ना है, आधा घंटा 40, पूरा काफिला हमारा लेडीज लेडीज सेक्शन में गए, जेंट्स जेंट्स में बैठे, 2 रकत मौला अब्बास की नमाज पढ़ी हाजत की और हमने वो अमल किया। ये ऐसी चीज, उसमें 2 वास्ते इमाम हुसैन के, किसी का बेहक है अखी अकल हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास आपको आपके भाई हुसैन का वास्ता मेरी हाजत पूरा करो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह गुलिस्तान के मजलिस में बताऊंगा। तो ये वो हस्ती है मौला अब्बास। अब जुमला सुनना कि अगर अबुल फजल नहीं होते दुनिया में, इतनी बड़ी बात बोल रहा, मौला अब्बास नहीं होते दुनिया में तो दुनिया को मालूम नहीं होता कि एक इमाम की इताअत कैसे करते हैं। आपने सुन लिया बस, इताअत मालूम होती अगर कोई दुनिया में अब्बास नहीं होते तो लोगों को मालूम नहीं होती कि इमाम की इताअत कैसे की जाती, जो पूरी ख्वाहिश पैदाइश से लेके शहादत तक एक ही जहन में था कि करबला 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 करबला, मैं करबला के लिए दुनिया में आया। मां वही बोल रहे, बहनें वही बोल रहे, भाई वही बोल रहे, बाबा ने वही कहा, पूरा खानदान बोल रहा कि तुम करबला के लिए आए हो। लेकिन करबला कैसी तैयारी करके मेरा मौला आया था, हुसैन ने कुछ नहीं कहा, पीठ पे हाथ रख के कहा बास तलवार नहीं चलाना। यह है मौला अब्बास, यह है इताअत मौला अब्बास की। हम सोच ही नहीं पा रहे, घर में मौला अब्बास का आलम है तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, कयामत आ जाए जिंदगी बदल जाए। उस अलम को पकड़ के मांग के देखो, मांग के देखो, मांग के देखो, मांग के देखो। लेकिन वो हाथ ऐसे होना, जब अब्बास का अलम उठा दे तो हाथों को भी चेक करो कि ये हाथ कोई गलत काम ना करे। याद रखो, अली के ख्वाबों की ताबीर बनकर पैदा हुए, मदीने से करबला तक जब भी बहादुर का दिल जोश शुजात से लबरेज हो रहा था और दिल में ख्वाहिश हो रही थी, लेकिन हुसैन ने हर ख्वाहिश को खत्म किया। यहां तक के जब 2 मुहर्रम को पहुंचे, अब्बास ने एक ऐसा लकीर खींची, लाइन को ड्रॉ किया और कहा कि खबरदार कोई लाइन को क्रॉस ना करे यजीदी लश्कर को। जब खैमे हटाने का हुक्म आया, अब्बास ने लाइन को ड्रॉ करके कहा भी अब्बास जिंदा है, बस ये कहना था। तेवर को देखा, हुसैन ने बीबी जैनब से कहा, बहन तुम अब्बास को रोको, तकल्लुफ से मत रो यार, मत रो तकल्लुफ से। बीबी जैनब ने कहा कि बहन तुम रोको अब्बास को, अब तक मैंने बहुत रोका है अब्बास को। शहजादी ने फिजा से कहा कि फिजा मेरे भाई को बुला कर लाओ। फिजा ने आके कहा कि आखा बीबी बुला रहे। बीबी जैनब का इतना एहतराम करते थे जैसे माँ का एहतराम करते। फौरन बीबी का नाम सुना, सर को झुका के आके बीबी के सामने बैठ गए। जैनब ने एक जुमला कहा कि भैया अब्बास, आखा की ख्वाहिश है कि खेमे हटा लो। आखा की ख्वाहिश है खेमे हटा लो, कुछ नहीं कहा, अपनी पूरा जो जज्बा था खदमों पे आ गया। ये इतात इमाम है, ये इतात इमाम, कोई मामूली हस्ती का नाम अब्बास नहीं। दोस्तों फातिमा ने अपना बेटा कहा है, बीबी ने कहा ये मेरा लाल है। जब मौला अब्बास की विलादत हुई, जब पैदा हुए, बीबी उम्मुल बनी लाखों सलाम उस माँ को लाए मौला अली के पास, जनाब अब्बास को ऐसा लेकर आई। माँ है ना, दिल घबरा रहा था, कहने लगी मौला बच्चे ने आंखें नहीं खोली। मौला माँ है ना घबरा गई। अली ने गोद में लिया, लेके कहा उम्मुल बनीन घबराओ मत, अभी खोलेगा। कहा बेटा हुसैन इधर आओ। हुसैन के साथ शहजादी जैनब भी आई। अब्बास को हुसैन की आगोश में दिया, बस देना था आंखों को खोल के चेहरे हुसैन की ज्यारत की। यही वजह है कि जब घोड़े से जमीन पर आए थे तो गाजी इतना मजबूर हो गया। हुसैन जब अब्बास के पास पहुंचे और सर को जानू पे रखा तो अब्बास ने एक जुमला कहा कि आखा जब दुनिया में आया था तो मैंने आपके चेहरे की ज्यारत की थी। अब अब्बास इतना मजबूर हो गया कि एक आंख में तीर है और एक आंख में खून। हाय 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 हाय, मैं कैसे आपकी ज्यारत करूं। हुसैन ने तीर को निकाला, खून को साफ किया। जैसी मौला हुसैन की उन्होंने ज्यारत की, वहीं पे बीबी जैनब खड़ी हुई थी। बीबी जैनब ने पूछा इमाम अली से कि बाबा क्या ये हमारा वही भाई है जिसका नाम अब्बास है। अली ने कहा हाँ बेटी तुम्हारा ये वही। तो बीबी जैनब ने हुसैन से कहा माँ जाए थोड़ी देर के लिए मेरे भाई को मेरे हवाले। हुसैन ने अब्बास को बीबी जैनब की गोद में दिया। जैनब ने अपने बच्चों की तरह पाला है अब्बास को। अब्बास को लिया आगोश में, अब्बास तो सिर्फ 32 ईयर्स में शहीद हो गए। आगोश में लिया, अब्बास के हुस्न को देखा, बहन का दिल इतना बढ़ गया कि मेरा भाई कितना हसीन है, मेरा भाई कितना खूबसूरत है। बाजू भरे हुए बाजुओं को देखा, प्यार किया अपने बाजू के भाई के बाजुओं को, माथे को चूमा। उसके बाद आहिस्ता से हुसैन भी खड़े हुए, अली भी खड़े हुए, बीबी जैनब की आगोश में मौला अब्बास है। जैनब ने आहिस्ता से अब्बास के कान में कुछ कहा, बस कहना था। चंद घंटों के अब्बास से आंखों में आंसू आ गए और हाथ को अंगड़ाई ली तो अली ने कहा बेटी तुमने अपने भाई से क्या कह दिया। तो जैनब ने कहा कि बाबा ये अम्मा फातिमा की वसीयत थी कि जब अब्बास दुनिया में आए तो मेरा सलाम करना। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। इसी तरह पुरसा दो, इसी तरह पुरसा दो। आज गाजी का मातम है, गाजी का मातम है, 8 मुहर्रम की रात है। करबला आई, शबे आशूर, मौला अब्बास मौला हुसैन के खेमे में बैठे हुए, रात का वक्त। इमाम ने उमर साद से के पास पैगाम भिजवाया, मौला अब्बास जा रहे थे तो हबीब और सईद से कहा, हबीब और मुस्लिम इब्ने औसजा से कहा कि अब्बास के साथ जाओ। बीच में मौला अब्बास, एक साइड पे हबीब इब्ने मज़ाहिर, एक साइड पे मुस्लिम इब्ने औसजा। मुस्लिम इब्ने औसजा रसूलुल्लाह के साहबी हैं, हबीब मौला हुसैन के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। दोनों के साथ अब्बास जब उमर साहब से बात करने जा रहे थे तो تو حبیب ابن مزاحر نے مسلم سے کہا کہ مسلم وہ وقت یاد ہے کہ جب میرے مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی تھی, کیوں کی تھی؟ کربلا کے لیے. تو مسلم نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے. بس یہ دونوں کا جملہ سنا عباس نے انگڑائی لے کے کہا حبیب مسلم تم عباس کو جوش دلاتے ہو, کل دیکھنا جنگ کیسے کروں گا, کل دیکھنا میں اپنے بابا کی خواہش کو کیسے پورا کروں گا. کیا خواہش تھی عباس؟ وقت گزرا, عاشورے کا دن آیا, ایک ایک شہید ہوا, قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا, اونو محمد کی میتیں آئیں. اس وقت عباس تڑپ کے کہنے لگے آقا مجھے اب مرنے کی اجازت دیجئے, سینہ تنگی کر رہا. حسین نے کہا بھیا تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو. تو مولا نے کہا کہ آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار, جس کا میں علمدار ہوں. عباس خیمے میں گئے. میں آہستہ آہستہ اس لیے پڑھا کہ آج پرسے کی رات ہے, آج ایسا پرسا دینا کہ ام البنین تم کو دعا دے, فاطمہ تم کو دعا دے, غازی کا حق بہت ہے. بس عباس خیمے میں گئے, سکینہ کو گود میں اٹھایا, اٹھا کے حسین کے خیمے کی طرف چلے. جیسے ہی دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ عباس سکینہ کو لا رہے, اب عباس سے کچھ نہیں کہا, حسین نے سکینہ سے کہا کہ سکینہ چچا کی سفارش کر رہی ہو, کل تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے, کل کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے تو چچا یاد آئیں گے. اور یہی تھا, ہر تماچے پہ سکینہ کہتی تھی کہ چچا میرے رخسار نیلے ہو گئے. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. امام نے کہا کہ بھیا جاؤ پہلے سیدانیوں سے رخصت ہو لو. ایک ایک کے خیمے میں گئے, آخر میں بی بی زینب کے خیمے میں جا کے سر کو جھکا کے بیٹھ گئے. شہزادی نے کہا کہ بھیا کیا چاہتے؟ کہا بی بی مرنے کی اجازت دیجئے. بس یہ سننا تھا, زینب نے عباس کے چہرے کو دیکھا, اپنے بازوؤں کو دیکھنے لگی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. عباس نے کہا بی بی کبھی آپ اپنے چہرے کو بازوؤں کو دیکھتی ہے, کبھی میرے چہرے کو؟ تو کہا بھیا تم جا رہے ہو خدا حافظ, لیکن ایک بات سنتے ہوئے جاؤ, 21 رمضان کی رات کو بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لیے. میں نے بابا سے پوچھا کہ کیوں لے رہے, تو بابا نے کہا تھا بیٹی ایک دن آئے گا تیرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی, تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی. زینب کہتی ہے کہ بیٹا مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا, لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں 18 اور عباس جیسا بھائی ہو, ارے کس کی مجال ہے جو میرے بازوؤں میں رسن باندھے. عباس اب تم جا رہے ہو, زینب کو یقین آ گیا کہ زینب کے سر سے چادر چھینی جائے گی. بس دوستو میں نے مجلس ختم کی. بیویوں سے رخصت ہو کر عباس میدان میں آئے, بس میں نے مجلس ختم کر دی. میدان میں آئے, نیزے کی انی پہ مشک سکینہ کو باندھا, نہر میں چھوڑی, نہر کے پاس ٹہلنے لگے. دنیا کو بتایا کہ آج حکومت, آج طاقت, آج قبضہ کس کا ہے. لیکن جب ٹہل رہے تھے تو پانی میں سے ٹھنڈی ہوا آنے لگی. عباس کے سینے میں کلیجے پہ تیر چلنے لگا کہ یہاں ٹھنڈی ہوا ہے اور سکینہ پیاسی ہے, وہاں پر علی اصغر جھولے میں پیاسا ہے. علم کو لے کے چلے, بس میں نے مجلس ختم کر دی. علم کو لے کر چلے, حسین در خیمہ سے منظر دیکھ رہے تھے کہ ترائی سے علم تیزی کے ساتھ اٹھا اور تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا. جب علم بڑھ رہا تھا پھر حسین کے چہرے کا رنگ بدلا, مولا نے دیکھا کہ علم نے جگہ بدل دی. دوستو میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا, جگہ کیوں بدلی گئی؟ جب عباس کا سیدھا شانہ قطع ہوا پھر علم آگے بڑھا, پھر علم نے جگہ بدلی, حسین کے چہرے پہ رونا آ گیا, دونوں ہاتھ کٹ گئے, مشک سکینہ کو دانتوں میں دبایا, اپنے آپ کو صفر بنایا. لیکن ہرملا کا تیر چلا, سکینہ کی مشک جیت گئی. عزیزو آپ سامنے سے وار کرتے تھے, پوچھتے تھے عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے, ایک سر پہ گرز آیا, علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا, کاکا میرا آخری سلام قبول.
عباس کہاں سے تمہیں عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر, لوٹا گیا شبیر دہائی ہے خدا کی, اب بندے کمر ٹوٹ گئے ہائے برادر, جو آئے برادر شیدائے برادر, عباس کہاں سے تمہیں لے آئے اے گود کے پالے, یہ تاسف کا محل ہے, میں زندہ رہوں برچیاں تو کھائے برادر, جو آئے عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر, جو آئے برادر پانی نہ پیا سوچ کے پیاسی ہے بھتی, ارے قربان وفا کے تیرے ہو جائے برادر, جو آئے برادر شیدائے برادر, عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر, یا چھد گئی ماش اور وہاں آس لگائے, بیٹھی ہے بھتی جی تیری سکائے برادر, عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر, جو آئے برادر شیدائے برادر, دل سوزش ہے اب کون بھرے رے کو علم کے, اس دھوپ میں سر پر میرے پھیلائے برادر, جو آئے برادر شیدائے برادر, عباس کہاں اب کون ہے باقی میرا ایسا के पसे मर लाशा मेरा मक्तल से उठा लाए बरादर जो आए बरादर शहदाए बरादर अब्बास अब ठोकरें खाते हुए फिरते हैं अमर सू कौन हाथ पकड़ कर मेरा ले जाए बरादर जो आए बरादर शहदाए अब्बास कहां से तुम्हें ले आए बरादर जो आए बरादर शहदाए बरादर मैदान में हर एक रोने लगे अहले जफा सब सर पीट के जब शैन कहा हाय बरादर जो आए बरादर शैन आए बरादर अब्बास कहा शब्बीर दुहाई है खुदा की अब बंदे कमर टूट गए हाय बरादर जो आए बरादर शहदाए बरादर अब्बास पानी न पिया सोच के प्यासी है भतीजी कुर्बान वफा के तेरे हो जाए बरादर जो आए बरादर शहदा अब ठोकरें खाते हुए फिरते हैं हम हर सू कौन हाथ पकड़ कर मेरा ले जाए बरादर जो आए बरादर शहदाए अब्बास कहां हर एक रोने लगे अहले जफा सब सर पीट के जब सहने कहा हाय बरादर जो आए बरादर शहदाए बरादर अब्बास कहा पाले ये तासुफ का महल है मैं जिंदा रहूं बरछियां तू खाए
आए सारे मैदान
गोपी सारे
ये जंगो जो दरख्वास्त है कुछ काम नहीं है,
अब्बास हुसैन मेरा नाम नहीं है, अब्बास हुसैन मेरा नाम नहीं है, दरिया ना उलटू तो मेरा नाम नहीं है, दरिया ना उलटू तो मेरा नाम नहीं है,
सका मैं सकीना कहूँ है दर का कमर हूँ,
सका मैं सकीना कहूँ है दर का कमर हूँ,
सका मैं सकीना कहूँ है दर का कमर हूँ,
सका मैं सकीना कहूँ है दर का कमर हूँ,
दरिया ना उलटू तो मेरा नाम नहीं है,
अब्बास हूँ सकाई मेरा नाम नहीं है, अब्बास हूँ सकाई मेरा नाम नहीं है, दरिया ना उलटू तो मेरा नाम नहीं है,
दरिया ना
उलटू तो मेरा नाम,
कैसे हो अरब शाह को मेहमान बुलाया,
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 बेदीनो जरा गैरत इस्लाम नहीं है,
अब्बास हूँ सफाई मेरा नाम नहीं है, अब्बास हूँ सफाई मेरा नाम नहीं है,
दरिया ना
उलटू तो मेरा नाम नहीं है,
दरिया ना
उलटू तो मेरा नाम नहीं है,
ए ज़ालिमो ये साकी कौसर की है उम्मा,
ए ज़ालिमो ये साकी कौसर की है उम्मत,
ए ज़ालिमो ये साकी कौसर की है उम्मत,
ए ज़ालिमो ये साकी कौसर की है उम्मत,
पानी का मुयस्सर जिन्हें एग्जाम नहीं है,
अब्बास हूँ सकाई मेरा नाम नहीं है, अब्बास हूँ सकाई मेरा नाम नहीं है, दरिया ना उलटू तो मेरा नाम नहीं है,
दरिया ना
उलटू तो मेरा नाम नहीं है,
है जोर मेरे बाजुओं में दस्ते खुदा का,
जोर मेरे बाजुओं में दस्ते खुदा का,
है जोर मेरे बाजुओं में दस्ते खुदा का,
है जोर मेरे बाजुओं में दस्ते खुदा का,
दरिया ना उलटू तो मेरा नाम नहीं है,
अब्बास हूँ सताई मेरा काम नहीं है, अब्बास हूँ सताई मेरा काम नहीं है, दरिया ना उलटू तो मेरा नाम नहीं है, दरिया ना उलटू तो मेरा नाम नहीं है,
हुसैन हुसैन
हुसैन
हुसैन
हुसैन
हुसैन
हुसैन
हुसैन
हुसैन
हुसैन
हुसैन हुसैन
हुसैन
हुसैन
हुसैन
हुसैन
हुसैन
हुसैन
हुसैन
हुसैन
हुसैन
हुसैन
हुसैन
हुसैन अब्बास मची है रन निकया
شکست نگاہوں کا نور کھوئے ہوئے
کمر شکست نگاہوں کا نور کھوئے ہوئے
حسین تم کو صدا دیتے ہیں سنو عباس مدینے سے تمہیں ام البنین بھیجا تھا
مدینے سے تمہیں ام البنین بھیجا تھا
کہ ابن فاطمہ پر جا فدا کرو عباس
مچی ہے رن میں قیامت
گلے پہ قاتل چڑا ہے سینے پر
چوری گلے پہ قاتل چڑا ہے سینے پر
ہے جس کا خوف وہی سا نہ ہو عباس چلنے لگی زمین کا بھی کیا
لگی زمین کا بھی
حسین زب حقیے جا چکے سنو عباس
مچی ہے قیامت اٹھو اٹھو عباس
چلے ہے لو آلے نبی کو ہے ستم بچاؤ یہ جو کر سکتے ہو کرو عباس
بچی ہے رن میں قیامت اٹھو اٹھو عباس
نثار کر سر ہاتھ اپنے کٹ پائے
سار کر دیا سر ہاتھ اپنے کٹ
پائے نثار کر دیا سر ہاتھ اپنے کٹ پائے حجاب کس کہ کیوں شرم سار ہو عباس
مچی ہے رن میں قیامت اٹھو اٹھو عباس
بجھا چکی ہے وہ پیاس اپنے عشق پی پی کر
بجھا چکی
نہ پانی نہ مانگے کی گھر چلو عباس
مچی ہے رن میں قیامت اٹھو عباس
جو کوئی پوچھے کہ مجبور کربلا حق ہے یہ کہنا اگر کہو
عباس مچی ہے رنگ میں قیامت